के बाद की लीला भोर की लीला होती है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण अलग अलग अपने अपने महल में, श्री कृष्ण नंदगांव में शयन करते हैं, उनको माँ यशोदा रोहिणी खिलाती है, और श्रीमती राधा रानी को जटिला सुलाती है जावट में। और जब उनको सुलाकर और अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, राधा रानी जब माँ यशोदा अपने कक्ष में चली जाती हैं और जटिला जब अपने कक्ष में चली जाती हैं, लगभग 10:30 बजे की रात्रि के समय श्रीमती राधा रानी वहाँ ऐसे कपड़ा डाल कर नीचे वहाँ से उठकर लक्षित गति से वहाँ से निकल कर वन में आ जाती हैं, द्वादश वनों में जहाँ रासलीला होनी होती है। और श्री कृष्ण भी वैसा कर रहे हैं, दोनों 10:30 बजे से लगभग 3:30 बजे तक भगवान का रास विहार होता है। प्रतिदिन नित्य लीला है, प्रतिदिन रास विहार करते हैं, सभी गोपियाँ आ जाती हैं प्रत्येक रात्रि को। और 3:30 बजे के आसपास थोड़ा श्रीमती राधा रानी को भी थकावट होती है, कृष्ण को भी थकावट होती है, गोपियों को थकावट होती है। कुंज में ही, वन में ही श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण और सभी गोपियाँ शयन करती हैं, आराम करती हैं। एक दिन की बात है, एक कुंज में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण सो गए, आराम कर रहे थे, और तब तक प्रभात का समय होने वाला था। तो वृंदा देवी ने योग माया ने व्यवस्था किया कि देर हो जाएगा, प्रकाश होते होते श्रीमती राधा रानी को जावट में जाना है और कृष्ण को नंदगांव में पहुंच जाना चाहिए, माँ यशोदा जब तक सोई है उसके पूर्व जाकर उसके कक्ष में सो जाना है। वैसे ही श्रीमती राधा रानी को भी जटिला के जगने से पहले अपने कक्ष में जाकर सो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा परिश्रम हो गया था रासलीला में, दोनों थके थे, विश्राम कर रहे थे। योग माया ने, वृंदा देवी ने व्यवस्था किया जगाने के लिए, विभिन्न प्रकार के पक्षी भेजे कलरव करने के लिए, पक्षी भोर में बोलते हैं। उसने गोविंद लीला में वर्णन किया गया है कि विशिष्ट पक्षी थे, सुख थे, सुगा सुख और सारिका, वे बैठे हुए थे दाड़िम के वृक्ष पर, दाड़िम अनार, और मयूर, मयूर भी भेजे, मयूर को भी बोलना है, मयूर किस वृक्ष पर बैठे थे, कदम वृक्ष पर, और कबूतर पीलू वृक्ष पर, जहाँ हम लोग आज कथा कह रहे थे ना, क्या बस झुका हुआ वो पीलू का वृक्ष था, पीलू वृक्ष पर कबूतर बैठ गए, कोयल बैठ गए आम वृक्ष पर, कोयल और कोकिला स्त्री पुरुष बैठ गए थे आम के वृक्ष पर, और जो भ्रमर से भोरे थे वो विभिन्न प्रकार के जो लताएं हैं उस पर बैठकर झंकार कर रहे, राधा कृष्ण को जगाना है। लेकिन थोड़ी दोनों थकावट ज़्यादा हो गई थी, इसलिए श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जग नहीं रहे थे, लेकिन गोपियाँ जग गई। गोपियाँ जग गई तो चिंतित होने लगी, प्रकाश हो जाएगा, और जगाने का प्रयास करने लगे। अंत में वृंदा देवी परेशान हो रही थी, सारे उनके प्रयास विफल हो रहे थे, पक्षियों से राधा रानी ही जग सकी, भर भ्रमर गुजार कर रहे नहीं जग सके। अंत में उन्हें कपकटी नाम के एक बंदरी को भेजा, बंदरी पालित है, तो उसने आवाज किया, जोर से आवाज किया, तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जग गए। जगने के बाद अभी थोड़ा अंधेरा ही था, जल्दी जल्दी भगवान को भी लगा, श्रीमती राधा रानी को लगा प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश होने के पहले उस वन से जहाँ भी थे उनको नंदगांव में कृष्ण को जाना है, श्रीमती राधा रानी को जाना है, जावट में जाना है, तो जल्दी जल्दी अब करना था, देर नहीं कर सकते थे, थोड़ा अंधेरा था। श्रीमती राधा रानी ने क्या कि भगवान का जो पीताम्बर था वो समझ कि मेरा मेरी ओढ़नी है, उत्तरी है, उसको लेकर चल दो। और इसके बाद श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी का जो नीले रंग का दुपट्टा था उसे लेकर, अंधेरा था, कोई ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी कृष्ण चले गए नंदगांव में और श्रीमती राधा रानी चली गई जावट में। जाती हैं तो कौन सखी दाएं रहती है, कौन सी बाजू में रहती है, कौन आगे रहती है, कौन पीछे रहती है, सारा वर्णन है। और वहाँ पर श्रीमती राधा रानी पहुँच गई। अब तक कोई नहीं जगा था, बेड वैसा सुना था। श्रीमती राधा रानी अपने कक्ष में, स्वयं कक्ष में गई। धनिष्ठा ने भगवान राधा रानी का पैर धोया, सभी सेवाएं बढ़ती हुई है। धनिष्ठा नाम के सखी थी, उसने श्रीमती राधा रानी के पैर को धो दिया, धुली लगी थी और सुखा दिया। इस पर श्रीमती राधा रानी वही जो कृष्ण का पीताम्बर था लेकर सो गए। सोने का बहाना था और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का वो वस्त्र लेकर, नीले रंग का वस्त्र लेकर नंदगांव में अपने स्वयं कक्ष में सो गए। आप लोग जानते हैं श्रीमती राधा रानी की जो नानी है, क्या नाम है नानी का? मुखराई। मुखरा, मुखरा शब्द है मुखराई का, मुखराई गांव का नाम मुखरा। तो वह जब शाम को सोती थी मुखरा, तो उसे चैन नहीं आता था, नींद नहीं आती थी। सोती रहती कब भोर हो, कब भोर है, क्योंकि राधा रानी को देखना है, उसका कुछ सेवा करना है, उसका स्नान कराना है। नानी ये लगती है अपने राधा रानी के प्रति विशेष वात्सल्य है, स्नेह है। रात में बेचारी सो नहीं पाती थी। और इधर भी कृष्ण सोए हैं तो कृष्ण को देखने के पौर्णमासी जी योग माया, उसमें भी नींद नहीं आती थी। सुबह में कृष्ण को देखना है, कृष्ण की सेवा करना है, तो वैसे जल्दी जल्दी पौर्णमासी जी आ गई। अभी कृष्ण आकर लेट गए थे, प्रिटेंड कर रहे थे, बहाना बना रहे थे, मैं सोया ही हूँ। तो योग माया आई, माँ जसोदा ने योग माया को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। तो योग माया पौर्णमासी जी और माँ जसोदा गई शयन कक्ष में, श्री कृष्ण सोए हुए थे। माँ जसोदा को थोड़ा सा दुख लगा, नीले रंग का चादर ओढ़ कर सोए थे भगवान। तो माँ जसोदा जगाई और जगाने के बाद उपदेश देने लगे कृष्ण को कि बेटा देखो बलराम तुम्हारा बड़ा भाई है, दूसरे कक्ष में सो रहा है। उनको ऐसा शक हुआ कि रात में यह गया है और बलराम जी का जो नीला नीलांबर है वो लाकर खूब उपदेश दिए कि बेटा तुम्हारे बड़े भाई हैं, कितना तुम्हारा सम्मान करते हैं, उनको भी ठंडा लग रहा है, जाकर तुम रात में उनका चादर लेकर उड़े हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, रात्रि में जाकर उनका चादर छीना उठा लाया, सोचे उठा लाया वो सब। भगवान देखे तो पता लगे, उनको अब तक तो पता नहीं था, तो पता था कि मैं अपना फैसला कर रही हूँ। कोई सीरियस बात नहीं भगवान के, ठीक है मैं कल से मैं भाई का बलराम जी का चादर नहीं उठूंगा, इतना तो बहुत सीरियस बात नहीं थी इसमें। उधर मुखराई से 2 बजे रात में उठकर चल दी, आते आते जैसे तैसे वृद्ध शरीर था, दिखाई भी नहीं पड़ता, लकड़ी के सहारे जैसे से आंगन में पहुंच गई। चटिला को जगाई, राधा रानी अभी सो रही है, आज रविवार है, पूजा करने जाना है, सूर्य कुंड पर जाना है, जल्दी से जगाना चाहिए, स्नान करा कर पूजा के लिए भेजना है, रविवार है, सूर्य कुंड पर जाना है। भाव था कि पूजा सूर्य देव की पूजा करेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, मनु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारी गौ में भी ठीक रहेगी। तो दोनों गई, कौन कौन गई? शयन राधा रानी के शयन कक्ष में मुखरा और जटिला। मुखरा कौन है? नानी है। और जटिला कौन है? और साथ में कुटिला भी थी, राधा रानी को जगाना है, सेवा करना है। सबसे पहले नजर पड़ी मुखरा की, नानी की, और इसके बाद जटिला की। तो एकदम तो आग बबूला हो गई, एकदम असह्य वेदना हुई जटिला को और मुखराई को। मुखरा स्पष्ट कहना प्रारंभ की कि यह विशाखा से शिकायत कर रहे हैं, विशाखा सखी भी आगे, विशाखा तुम देखती हो कितना भारी अनर्थ हो रहा है, यह चादर लेट इवनिंग मैं 9 बजे के आसपास, 9:30 का इसी चादर को देखा था कृष्ण के कंधे पर, यही चादर है। और यह जो मैंने एक अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ है, पर पुरुष का दूसरे का वस्त्र, इसका मतलब कुछ संबंध है एकदम। और ये ये तुम खराई कर रहे थे और जटिला के क्या दशा हुई होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। अब तक तो ध्यान नहीं दे रहे थे, देखो बात तो हकीकत कृष्ण का पीताम्बर है, सखियों तो समझ लिया कि भूल कहाँ से हुई है, लेकिन अब तो तुरंत कुछ करना चाहिए। तो विशाखा ने क्या कहा, एकदम जोर से डांटना चाहती, अंधी कहीं का बोल ही तुमको दिखता नहीं है, दूसरे को दोषारोपण करती हो, ऊपर से सूर्य की किरणें आने वाली लालिमा छाई है उससे जो आ रहा है उसका प्रकाश पड़ रहा है पीला रंग का, और दूसरे श्रीमती राधा रानी का जो शरीर है उसमें पीलापन है, ये नीले रंग का वस्त्र तुमको पीला दिख रहा है, इसमें पीलापन हो रहा है, लेकिन पीलापन क्या है, श्रीमती राधा रानी का पीला शरीर है उसका आभा आ रही है और दूसरे सूर्य की किरण आ रही है लालिमा आ रही है तो उसे पीला दिख रहा है, तुमको बूढ़ी हो तुम लोग को इतना ही पता है, उसे तो बेचारी कर उससे बड़ी बेटा इस आँख मौल के ही निकल गए, गलती कर दिया, गई उधर तब तक इतना तो बुरे न समय था, श्रीमती विशाखा ने किया कि चादर खींच कर नीचे बेट के नीचे फेंक दिया और दूसरा वहाँ पर नीला रंग का दूसरा साड़ी था दूसरा पहन ओढ़ा दिया श्रीमती राम, और वो बेचारी उधर से मुँह ऐसे आँख ठीक करके थोड़ा धोकर पानी लेकर जैसे आई आई तो इसके बाद हमें अच्छा करने लगी बेटी क्षमा कर दो राधा रानी से कि हमने तुम पर दोषारोपण किया, विशाखा से कि जानती हो तुम लोग जानती हो वृद्धावस्था में दृष्टि कम हो जाती है और अंधेरा था मैंने देख नहीं सकती तो हमको कृपा करके क्षमा कर दो, नहीं कोई बात नहीं है ऐसा नहीं ऐसे, लेकिन कुछ भी अभियोग लगाना है तो सोच समझ कर लगाना चाहिए ना, ऐसे आकर सीधे किसी को आप सोच रहे चादर तुमने देखी पड़ा तुम्हारी दृष्टि थे मुझे 9 बजे रात्रि में तुमको दिखाई पड़ता है कि यही चादर था, देखो तो चादर तो वो तो वास्तविक चादर था नीचे था दूसरा चादर, ना 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 ये चादर नहीं, ये अभी जावर में लीला हुई थी।